ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें।
24 पढ़े हैं ना?
मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम्हें बहुत बड़ा विचित्र, विचित्र शब्द क्यों प्रयोग किया, जिसका विशेष चित्र है, हमारे जैसा चित्र नहीं है, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे, डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है। पढ़ते पढ़ते दिल करता है क्या करो जाना, मुरली सुनने जाना, वही बातें कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि क्यों दिल नहीं करता मुरली सुनने के लिए आने का, किसी का उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी, कभी थकावट नहीं आएगी। कोई हमारी निंदा कर दे, क्योंकि निंदा उसने हमारी हमने की, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, फूलने की जरूरत नहीं है, कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने की हुई है, हमने की हुई है, हमारा किया हुआ हमें दे रहे हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं, तो थकावट नहीं होगी, क्योंकि बाबा हमें इन सब से ऊपर उठा रहा है, और बाबा की श्रीमत पर ना होते तो इस अवस्था से कैसे ऊपर उठते, मान अपमान यश अपयश, दुनिया वालों ने कहा ये विधि हाथ है, भगवान के हाथ है, किसको मान मिले किसको अपमान मिले, किसको यश मिले किसको अपयश मिले, ये भगवान के हाथ में है, परंतु परमात्मा कहते हर एक को जो कुछ भी मिलता है वो उसके अपने कर्म का फल है। थकावट नहीं आएगी फिर उसको, क्योंकि उसको उमंग उत्साह आ जाएगा ना। सबसे जास्ती निंदा तो किसकी हुई, श्री कृष्ण की हुई इस दुनिया में, तो एक बार तो स्थूल में देखेंगे ना, श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए, कितने कलंक लगाए, मटकियां फोड़ी, गोपियों को क्या बोलते हैं पत्थर माले, हां मक्खन चोरी किया, ये किया वो किया, दुनिया भर के कलंक जो है श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिए, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। कमाल की बात तो ये है कि इतने कलंक लगाने के बाद फिर उस श्री कृष्ण की पूजा भी करते, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है, पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। कोई आपकी बेइज्जती करता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐ में फंस गए, ये हो गया वो हो गया, हम अच्छे वो अच्छे, कुछ भी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, हमें समझ में आ गया, भगवान आके पढ़ा रहा है, हमें श्रेष्ठ बना रहा है, बस हमें निश्चय इसका हटना नहीं चाहिए। निश्चय क्यों हट जाता है कि हम उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, हाँ उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, जो हमने कहा वो अच्छा नहीं लगा उनको। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं, थक इसलिए जाते हैं कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना, भगवान स्वयं आके पढ़ा रहे हैं। आज कुछ कम समझ में आया है तो अगले दिन समझ में आ जाएगा, अगले दिन समझ में आ जाएगा। गीत, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे,
जीने का सहारा तेरा
नाम रे, ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है, गोप गोपियां तो हम है ना, हम है गोप गोपियां। कैसे तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। उन्होंने किसको याद किया, अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। उन्होंने किसको याद किया, कृष्ण को। कृष्ण तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। गोप गोपी कहा जाता है आत्माओं को। उन्होंने गोप गोपियां समझ लिया देह को, देह को समझ लिया तो देह का बाप कृष्ण को समझ लिया। अब उनकी बुद्धि में ये बैठ नहीं सकता कि कृष्ण तो किसी का बाप बना ही नहीं। कृष्ण ने तो राधा के साथ शादी की नहीं, रुक्मणी के साथ शादी की, और कौन सी थी एक और, सत्यभामा, ठीक है ना। और उसके बाद 16,108 शादियां कर दी। उनके जो बच्चे हुए, चाहे 10, 10, 5, 2, 4, 5 जितने भी हुए, अब वो बच्चे ही तो उसको अपना बाप कह सकते हैं। हमारा तो वो बाप ही नहीं है, ऐवें हम उसको चिपक रहे हैं।
हमारा तो भाई है।
ये तो अब हमें समझ में आया, मतलब हम उसको जबरदस्ती ऐवें भगवान और बाप परमात्मा जो है ना बनाए जा रहे हैं। परमात्मा कहा ही उसको जा सकता है जो सिर्फ आत्मा हो, आत्मा हो। परमात्मा कहे ही उसको सकते हैं परम आत्मा, किसी देह को तो परमात्मा कह ही नहीं सकते। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। याद किसको किया जाता है, जो होकर जाते हैं। तो वास्तव में हम गोप गोपियों का वल्लभ, वल्लभ किसे कहा जाता है, पिता को। वल्लभ कहा जाता है पिता को, जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल है जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहां चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है ना, पहले परकाया, प्रवेश करके स्थापना किया, फिर जन्म लेकर उसकी पालना किया। पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए उनका वर्ष वर्ष, मतलब हर वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है, वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं, मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है, दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं, क्या नहीं पता कि ये राखी उत्सव क्यों मनाया हुआ है। राखी क्यों मनाई हुई है, क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं, क्राइस्ट को भी जानते हैं, बुद्ध को भी जानते हैं कि ये धर्म स्थापना करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर देवी सृष्टि श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। तो राखी किस लिए बांधी? भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए। किसको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए? आत्माओं को। परमात्मा आकर राखी बांधते हैं, रक्षा करने की विधि सिखाते हैं कि तुम भ्रष्टाचार करोगे तो दुख पाओगे, ना भ्रष्टाचार करो और ना दुख उठाना पड़े। पाप करेंगे तो दुख उठाना पड़ेगा ना, पाप करेंगे नहीं तो दुख क्यों उठाना पड़ेगा। तो राखी क्या है? पाप से, भ्रष्टाचार से स्वयं की रक्षा, दूसरों को कुछ नहीं। ये नहीं मैंने तो पाप कर दिया है अब भगवान आके बीच में खड़ा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मत मार मत मार मत मार, मैं उसको मार के आ जाऊं डंडा, अब वो डंडा मारने आए तो उसका बाप बीच में खड़ा, नहीं नहीं इसको नहीं मारना, ऐसे गलत है ना, ऐसे नहीं करें। ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं या फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं, सतयुगी देवी देवताए डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतनी डबल श्रेष्ठ, डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वो जलने की चीज है नहीं, वे जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है, जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है, भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है, बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती है, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है, पहले दो कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर चार कला, फिर आठ कला, दस कला, बढ़ते बढ़ते सोलह कला भ्रष्टाचार हो जाता है। सोलह कला भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो गया? हम सोलह कला संपूर्ण तो देवताओं को कहते आए थे, तो आज तो बाबा कुछ हाँ, तो हम सोलह कला संपूर्ण देवता थे, आज सोलह कला संपूर्ण भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, पूरी कमी नहीं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हो गए। अच्छा, अभी फिर सोलह कला भ्रष्टाचार को बदलाए बाबा क्या करते हैं, सोलह कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, ये सोलह कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है, ये और कोई बना ही नहीं सकता। आज सारी दुनिया एकदम सोलह कला भ्रष्टाचारी हो गई है, ये दुनिया रुकी हुई है, थोड़ी थोड़ी कहीं कतरा कतरा किनारी सच बची हुई है, जिसके आधार पर ये दुनिया अभी रुकी हुई है। जिस दिन सोलह कला हुई, उस दिन सारे की सारी आत्माएं परम था। बस हाँ जी, सेकंड में क्या होता, बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वे भ्रष्ट बन गया है, अभी वे भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वराज्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्वराज्य कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है, वही राज्य अब क्या हो गया है, भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य का को श्रेष्ठाचारी बनाने को, श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे, वे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, बाप क्या सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं, जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है, बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था, सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं, तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो, ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे फिर सृष्टि भी सतोप्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी, अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान हैं, कितनी उथल पाथल होती रहती है, कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितना दुखी होते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते, सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नर्क में, उपद्रव होते हैं नर्क में। उपद्रव भी पहले दो कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें, ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं, और हैं बहुत सहज, हैं बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है, सो तुम जानते हो, सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते। रावण क्या है, रावण क्या है, बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते, जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु परंतु उसको बनाने वाले भी नहीं समझते कि हमने क्या बनाया, ऐसा है स्वर्ग का सीन बनाया है, कैसे स्वर्ग में उड़न खटोले, हैं जी
वो भी देखा है ना,
नहीं देखा ना,
आत्मा ने देखा है तो उसको समझ में आता है,
जिन आत्माओं ने बनाया उन आत्माओं ने नहीं देखा, क्योंकि वो बनाने वाली आत्मा जैन धर्म की है और जैन धर्म आता नरक में है, वो आत्माएं भी स्वर्ग में नहीं आती, परंतु उन्होंने पढ़ा और उसी के आधार पर बनाया, जो उनके ग्रंथों में उनकी किताबों में स्वर्ग का वर्णन है वैसा उन्होंने अपनी कल्पना करके वो चित्र बना दिया। परंतु जो चित्र है वो एक्यूरेट स्वर्ग वैसा तो नहीं होता ना, वो हम समझ सकते हैं, मतलब जो ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं कि स्वर्ग में ऐसा नहीं होता होगा। बाबा ने कहा मल्टी स्टोरीज नहीं होती, परंतु वहां तो कितनी मंजिलें बनाई हैं, कितने ऊंचे ऊंचे उन्होंने छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे सैनिक, सेना होती नहीं वहां पर, क्योंकि वो तो एक स्वर्ग का मॉडल सोने का बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हमारी नजर से देखेंगे ना तब समझ में आएगा कि ऐसा स्वर्ग नहीं है, पर तो उन्होंने स्वर्ग बनाया है तो जो देखता है वो समझता है कि ये स्वर्ग का मॉडल है, परंतु एक्चुअल में जो कुछ भी वहां दिखाए हैं वो वहां स्वर्ग में ऐसा होता नहीं। बाकी कुछ कुछ निशानियां क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से बनाया है गोल्डन बनाया है, कलरफुल, और कितने लोग खड़े हैं, सीढ़ियां, इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, उड़न खटोले उड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक मतलब शहर का पूरा शहर बनाया है एक किस्म से, कि कैसा होता है वहां, कैसे मतलब राजा होते हैं, कैसे वहां बैठते हैं, तलवारें और ये सब चीजें होती नहीं वहां पर। युद्ध करने के लिए सेना नहीं होती, पुलिस नहीं होती, कोर्ट नहीं होता, तो उन्होंने सब चीज दिखा दी ना। बनाने में वहां कोई देरी नहीं लगती, सतयुग में बनाने में देरी नहीं लगती। जैसे एक ही दिन में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ऐसे वहां पर भी इतनी बड़ी साइंस साथ में जाएगी, फटाफट काम हो जाते हैं। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते, सोने को गलाया टाइल बन गई, सीधी दीवार की दीवार गला देंगे। हैं जी, तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। क्योंकि अब भी साइंस क्या है, 16 कला 100% भ्रष्टाचारी, और वहां ये साइंस होगी 100% श्रेष्ठाचारी। अब ये साइंस दुख देने वाली और वहां साइंस होगी सुख देने वाली, क्योंकि जो थोड़े से लोग वहां जाने वाले हैं वो 100% साइंस में परफेक्ट होंगे। और कोई भी चीज किसी को दुख देने वाली नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उन वो जो है वही जाएंगे साइंस जो 100% प्योर होंगे, पवित्र होंगे, जिनके अंदर मिलावट, झूठ, बेईमानी, चोरी, ठगी पता ही नहीं होगी, तो वहां साइंस के साधन सबको केवल सुख देने वाले होंगे, दुख का वहां नामो निशान नहीं। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। अब वही हवाई जहाज हैं, वही हेलीकॉप्टर हैं, वही ड्रोन्स हैं, क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आग लग नहीं गई, अब तो ड्रोन भेजा जाता है, जाओ ये बम वहां फेंक कर आ जाओ, आदमी भी नहीं जाता उसके साथ ड्रोन में। इसको कहेंगे ना, ये दिल्ली में बैठा है, इंतजार कर रहा है, बम्बे डूबे फिर मैं समझूंगा कि विनाश होगा मेरा। ऐसे नहीं होता भाई, हाँ वो जो डूबेगी तो डूबेगी, पर तो वो डूबेगी अपने टाइम पर, जब डूबेगी जब जो है ना पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो भी चल रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि ग्लेशियर जो है ना वो गिर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, जितनी जंगलों में आग लगी हुई है आप न्यूज देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने देशों के देश जो है ना आग में जल रहे हैं, और इतनी बड़ी आग है कि वो देश अपनी आग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर दवाइयां छिड़की जा रही हैं, पानी छिड़का जा रहा है, कोई भी तरीके से उस आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और कई सालों से जंगल जल रहे हैं, नॉन स्टॉप जल रहे हैं। कितने जंगल जल चुके होंगे आप बैठ करके अंदाजा लगा लो। बस यही उनके पास एक इलाज रह गया है, जिस गांव तक वो आग पहुंचने वाली हो उस गांव को वो खाली करा दे। तो अब ये गर्मी जो बढ़ रही है, ये जो बम्स और मिसाइल चलेंगे इससे गर्मी और बढ़ेगी जितने चल रहे हैं, और वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो जो समुद्र के किनारे बड़े बड़े बंदरगाहें हैं वो पहले डूबेंगे, तो पानी बढ़ेगा ना। अभी तो तूफान आते हैं, और ऐसे भयानक तूफान आते हैं जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, और अब तो तूफानों की लाइन लगी हुई है, एक तूफान जाता है दूसरा आ रहा है, दूसरा जाता है तीसरा आ रहा है, पहले कभी इतने तूफान नहीं आते थे। अल्पकाल के लिए सुख, एरोप्लेन का क्या है, अब अल्पकाल का सुख है, और बाकी वो सारे के सारे क्या है, दुख देने। 100 वर्ष के अंदर ये सब चार चीजें निकली हैं, 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ, तो तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। वहां तो झट सोने के महल बन जाते। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बने बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे और उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे। उसे क्या नहीं कहेंगे?
पांडव सभा।
क्यों? कहां होते हैं पांडव? पांडव संगम पर होते। जब महाभारत का युद्ध होना होता है तब होते हैं, वहां कोई युद्ध होना ही नहीं है। वहां पांडव किस लिए और कौरव किस लिए? उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते, उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती थी, वे पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भवके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है, वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। ये यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले थे डबल सिर ताज। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलाने को भगाया, ये किया, पर तो ऐसी बातें तो है नहीं। तो उत्सव पास हो जाते हैं, वे फिर मनाते आते हैं, ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था, पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है, रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो 5 विकार रावण के यहाँ लिखा है, 5 विकार मदोदरी के। मदोदरी माना स्त्री और रावण माना पुरुष, ठीक है ना। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है, पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं। माँ लक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाली नहीं दिखाएंगे। दीप माला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? नारायण के ने क्या गुनाह किया? पैसा कमा के सारा नारायण लाया और लक्ष्मी चाहिए, बुला ली लक्ष्मी को, नारायण को भी बुला लो, क्या जाता है आपका? मतलब नारायण कमा कमा के पैसा ला के दिया, लक्ष्मी थोड़ा कमाने गई थी और वो लुटा रही है अपने पति का पैसा। वो भी रात में आती है, वो भी गरुड़ पर बैठ के आती है और इन लाइटों को देख, लाइटें इसलिए जलाई जाती हैं, वो लाइटों को देखकर आंखें बंद कर लेता है और जिसके घर के बाहर लाइटें जो उसकी आंखें बिल्कुल कुछ और देख नहीं सकती, वो उसी घर में लक्ष्मी को घुसा देता है। कहानियां भी घड़े कोई मतलब कोई तरीका से बताए ना। लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे, इसलिए तो कहते हैं वो धन लुटा देती है, पति कमा कमा के लावे और वो ले दे के आ जाती है जिसको मर्जी। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तो हम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है, जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं, कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो, बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, एक ही कामना रख कर जाते हैं धन की, बस। जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है, धनवान तो ये बनती है। उस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाते हैं, बन जाते हो। ताकत उस समय तुम्हारे में है जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती हैं, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी, वहां दान देते हैं देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं, सतयुग में रावण राज्य होता नहीं, सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। यहां रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी, घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वो सतयुग में नहीं, जो चीज संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तुम प्रलब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। जब तुम सतयुग में पहुंच जाएंगे तो ये नॉलेज तुम सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश, स्थापना और विनाश, स्थापना हो गई फिर इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बड़े बखेड़े बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती। नारद की भी बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे, बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे या नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है, बाप तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न, डबल सिरताज, देवता बनाते हैं, बरोबर तुम बन रहे हो, देवताओं को दोनों ताज रहते हैं, तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे, औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाए, फिर ये है? ये जो लंका आदि दिखाते हैं वे भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ लिखा हुआ है, द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही हूं भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे, ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल्प 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 पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम नहीं चल सकेंगे, हम नहीं चल सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, श्री कृष्ण की हुई। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है, सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं, कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, गालियां भी खाई थी, नदी भी पार की थी। समझ में आया, क्या समझ में आया?
नदी पार की थी,
किसने की थी?
पंडित था
आप, है ना, भूल गए, ध्यान तुम्हारा कहीं और चला गया, ध्यान से वो दुनिया वाली कहानी है। सच में बाबा कहते बच्चे पाकिस्तान में इस कृष्ण बनने वाली आत्मा को सारी दुनिया ने गालियां निकाली, फिर वो पाकिस्तान से भारत में आए तो नदी पार करके आए ना, समुद्र पार करके आए ना, तो बाबा ये कह रहे तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना, श्री कृष्ण तो नहीं था, हाँ श्री कृष्ण वाली आत्मा थी। ये दादा आता जाता था, तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं, अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं, ये भी खेल है, ये भी खेल है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु जगत अम्बा बनना है। दान देते रहना है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है, ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझकर पार करना है, इसे खेल समझकर पार करना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भाव, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का, लौकिकता नहीं, आपको देखकर, आपके स्वरूप को देखकर उन्हें लगे कि ये इस दुनिया का मनुष्य है, ये अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भाव। अब ज्वाला रूप भाव मतलब अपनी बुराइयों को भी जलाने वाले, और आपको देखकर उनको समझ में आ जाए कि हम अपनी बुराइयों को कैसे जलाएं। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, परमात्मा वो सबसे बड़ी क्षमा है, उसकी आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, सारी दुनिया को पावन बनाने का काम बाबा कर रहे हैं। बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, बच्चे भी कर रहे हैं परंतु गुप्त रीति से। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। और जब आपने अपनी बुराइयों को भस्म कर दिया होगा तो उन आत्माओं को लगेगा वाक्य में ठीक है। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी, अभी तो अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छा बनने की प्रेरणा उनको आपसे तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बने। सबको देखेंगे, अरे ये तो ब्रह्मा कुमार इस दुनिया से तो निराले हैं। ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे, मतलब सबको रास्ता दिखाने के निमित्त बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाए। मतलब आप जो है बाबा की तरह सामने आ जाए, बाप समान बन जाए, बाप समान बन जाएं, तो ये सारे परवाने आपके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाने लग जाएंगे। स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं, संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम